नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं नए व्यूअर्स से सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, पहली बार नहीं आ रहे हैं, दो तीन बार आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब हमारे लिए एक बड़ा पावरफुल पैनल है फेज टू का विश्लेषण करने के लिए। आपके साथ हैं हमारे ओंकार जी, अभिषेक जी, और एक महाराष्ट्र के
नमस्कार।
एक नए स्पेशलिस्ट हमारे पास आए हैं, मिस्टर वरुण उपासना। हो सकता है आपने इनको कभी देखा हो, देखा हो तो कहाँ देखा है ये कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ओंकार जी से सीधे आरंभ कर देते हैं। ओंकार जी, क्या गर्मी आई चुनाव में कुछ या नहीं आई?
कहीं कहीं आई है, कहीं कहीं नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में पिछली बार के मुकाबले अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी अधिकृत आंकड़ा नहीं आया है चुनाव आयोग का, उसको आने में अभी और समय लगेगा, पर
वो तो कल तक आएगा।
10% कम मतदान दोनों ही राज्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि फेज वन में भी यही शिकायत थी कि वोट जो है कम पड़ रहे हैं। तब तो तरह तरह के बहाने बताए गए थे कि वो शुक्रवार भी था
शुक्रवार तो आज भी था।
और कुछ फसलों की कटाई भी थी, गर्मी भी थी, छुट्टियों का एक मौका भी था, तमाम तरह की बातें, वो सारी चीजें आज भी लागू होती हैं। लेकिन ये कम मतदान होना थोड़ा सा चिंताजनक है। या तो एक संतुष्टि का भाव लोगों के दिमाग में आ गया है कि भाई नरेंद्र मोदी की वापसी हो ही रही है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, तो हमें ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, घर से निकलने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है इस धूप में। दूसरा एक और कारण मेरी समझ में संजय जी ये आ रहा है कि इस बार आप, मैं बिहार की तो नहीं कहता, वहां तो जमीन पर इस समय अभिषेक हैं तो वो बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे जो विपक्ष है वो लगभग मैदान से गायब दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना जनसभाएं हो रही हैं, ना रोड शो हो रहा है, ना अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कुछ किया जा रहा है, ना मीडिया में उस तरीके से उनको महत्व दिया जा रहा है। आप जरा याद करिए, विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव लगभग हर मीडिया हाउस में लंबे लंबे इंटरव्यू देते हुए, प्रोग्राम में बैठे हुए, इसके अलावा एक बस पर सवार होकर के पूरे प्रदेश में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं? क्या बिल्कुल ये मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि 2024 का ये जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, ये हमारे लिए है ही नहीं, हमें आगे अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, या आगे जो 2029 में लोकसभा चुनाव आएगा उसी में ताकत लगानी है? एक और कारण समझ में आता है, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जब्ती भी हुई है, छापेमारी जम करके हुई है, अभी चुनाव की घोषणा से पहले भी कुछ राज्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो विरोधी दल हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास मुझे लगता है कि पैसा भी कम है, उनका
ये तो
हौसला
सब
भी
लोग कह
टूट
रहे हैं
गया
कि
है।
पैसा बहुत कम है इनके पास।
इनके पास पैसा भी कम है तो लगाएं कहाँ से? जो जो ये काला धन इनको मिलता था, हवाला से मिलता था, उसमें जिस तरह से ये कार्रवाइयां हुई हैं, गोवा चुनाव में जो 45 या 48 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप से लेकर के बांटा गया था, उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से तिहाड़ दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि सारे ही दलों में एक मायूसी भी है, एक हताशा भी है, एक निराशा भी है, और उनके कार्यकर्ताओं में भी और उनके नेताओं में भी एक ये भाव आ गया है कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनके जो मतदाता हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो फिर नीचे तक जाता है, उनके समर्थक तकों में जाता है, तो हम ये मान करके ना चलें कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो विपक्ष के मोदी विरोधी मतदाता हैं, उनमें भी एक निराशा का भाव है। कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, जैसे मेरठ में, अमरोहा में, कुछ दूसरी जगहों पर हो सकता है कि वहाँ उस तरीके से मुकाबला होते हुए दिखाई दिया हो, पर सब जगह ये नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा।
एक बात और भी है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस बार मत प्रतिशत इसलिए भी कम है क्योंकि बड़े मेट्रोज, जैसे आपके NCR के जो बड़े मेट्रोज हैं, तो उनमें चुनाव था, गाजियाबाद में था, नोएडा में था, मथुरा में था, तो ये बड़े बड़े शहर हैं, थोड़े से इनमें वोटिंग अपेक्षाकृत कम हुई दिखती है। लेकिन बागपत जैसे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ आंकड़े, पिछली बार 64.68 हुई थी, इस बार जो अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से 55.93 हुई है, तो ये थोड़ा सा हैरत वाली बात है, या तो फिर बागपत में जो विपक्ष है वो निकला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा ही एक तरफ आपका एक तरफा मामला था, क्या कहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सही आकलन है आपका संजय जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वहाँ राजकुमार सांगवान लड़ रहे हैं और राजकुमार सांगवान ऐसे कार्यकर्ता हैं RLD के जो चौधरी चरण सिंह के समय से लगे हुए थे, कभी उनको कोई टिकट नहीं मिला, कभी उनको कोई बड़ा पद भी नहीं मिला, लेकिन एक निष्ठ जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से वो लगे हुए थे और किसी को यकीन नहीं था। वो किराए के एक कमरे में रहते हैं, घर में भी नहीं रहते, एक पश्चिमी कचहरी रोड पर एक वकील साहब हैं, उनका घर है, उनका एक कमरे में रहते हैं और वो किराया भी नहीं देते। वो कहते हैं कि साहब आपके कुछ थोड़े बहुत काम कहीं अटके हुए हों तो मुझे बता देना, मैं भाग दौड़ करवा करके जो है वो करवा लूँगा। तो ऐसे साधनहीन आदमी को बागपत से टिकट दिया गया, पर सबको पता है कि इस बार का नतीजा क्या रहना है। BJP और RLD का जितना कैडर है, जो इतने मतदाता हैं, जितने सपोर्टर हैं, वो सब उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे लोग हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि यार क्यों पैसे खर्च किए जाएं, क्यों इतना पसीना बहाया जाए, कुछ सीटें तो हैं ना जहां से जीतना ही जीतना है BJP और RLD के कैंडिडेट को, तो वो भाव है वहां पे।
तो अब मोटा मोटा यदि देखें तो इस बार जो सीटें जो गई थी वो असम की 5 सीटें थी, बिहार में 5 सीटें थी, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें थी, और आपके छत्तीसगढ़ में अच्छा मतदान हुआ है, जम्मू कश्मीर में 1 सीट थी जम्मू की, कर्नाटका में 14 सीटें, 28 में से 14 सीटें थी, आज सबसे बड़ा जो था वो कर्नाटका में था, नहीं बल्कि केरला में, केरला की 20 सीटें थी, और केरला में भी अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ, पिछली बार 70% प्लस था, इस बार 65 point something है। मध्य प्रदेश में शुरू में तो बहुत ही कम चल रहा था, लेकिन बाद में 58% तक पिकअप कर गया, यहाँ पर 7 सीटों पे होना था, 1 पर रीशेड्यूल हो गया, 6 पर हुआ है। महाराष्ट्र में 7 सीटों पर हुआ है,
8 सीटों पे हुआ महाराष्ट्र में।
ओके, मणिपुर में आउटर मणिपुर का लगभग 3/4 एरिया पोल हुआ है, 1/4 जो था वो पहले राउंड में हो गया था। राजस्थान की 13 सीटें थी आज, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट और पश्चिम बंगाल की 3 सीट, ये 88 सीट थी, ओरिजिनली 89 थी, लेकिन उसमें से 1 सीट जो है वो चली गई है अगले राउंड में। तो अब अमरोहा की जो सीट थी ओंकार जी,
जी
उसमें अच्छा कॉन्टेस्ट था, तो आप क्या लगता है कौन आगे है?
देखिए साहब, ठीक है 2019 में दानिश अली बीएसपी,
मैं केवल दो ही सीट जहां कॉन्टेस्ट था वो मेरे हिसाब से वो डिस्कस करूंगा, अमरोहा और
आपने आपने सही पकड़ा है, मैं मेरठ भी शामिल करूंगा इसमें, तीसरी सीट वो है अमरोहा से 2019 में बीएसपी के टिकट पर ये जीते थे दानिश अली। देखिए उसमें और अब में अंतर आ गया है, तब आरएलडी भी साथ थी और बसपा भी साथ थी, तब जाकर के मतलब सपा भी साथ थी और आरएलडी भी साथ थी, तब जाकर के दानिश अली जीत गए थे। इस बार ठीक है
कुछ तवर सिंह तवर जो थे, कंवर सिंह तवर 2019 में भी 45% वोट लेके आए थे।
जी हाँ, तो मेरा कहना ये है कि इस बार ये 8 में से 7 जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में, इस बार संजय जी 8 की 8 सीटें जीतेगी और अमरोहा में भी दानिश अली हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के साथ एक वर्ग तो है ये तो मान लेते हैं, और समाजवादी पार्टी भी है तो ठुक करके उनके साथ है, लेकिन जो अदर्स फिर रह जाते हैं वो तो उनको वोट नहीं करेंगे, किस लिए वोट करेंगे? कोई बिल्कुल ही कांग्रेस का अंधभक्त है तब तो अलग बात है, और वो मिल जाते हैं अभी भी, हर गली मोहल्ले में एक दो घर ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी कांग्रेस के अंधभक्त हैं, वो राहुल गांधी के दीवाने हैं, पता नहीं क्यों है। तो हाँ मतलब वो समझ में नहीं आता कि कई चीजें तर्कों से परे हो जाती हैं, तो वो है अभी, लेकिन वो उतने वोट नहीं होंगे कि दानिश अली की नैया को पार लगा दें, और वहां से कोई ऐसी खबरें भी नहीं आ रही हैं कि कोई बम बम हो गया है मामला, और कांग्रेस की जो हम लगा रहे थे कि एक भी सीट नहीं आएगी इस बार तो अमरोहा ना हो जाए, रायबरेलिया अमेठी की जगह, तो वैसा मुझे लगता नहीं है। मेरठ में शुरू में पता चल रहा था कि कुछ टफ फाइट चल रही है, दोनों तरफ से ही हैवी वोटिंग हो रही है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो सुनीता वर्मा है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, उनके पक्ष में जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनका टर्नआउट काफी ज्यादा है, कुछ इस तरह की सूचनाएं आ रही थी, लेकिन शाम को जब मेरी बात हुई तो फिर पता चला है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो अच्छी खासी तादाद में निकले हैं, और वहां पर भी सीट बीजेपी की निकल जाएगी। अलीगढ़ का जहां तक प्रश्न है तो अलीगढ़ तो एक्चुअल में समीकरण ही वहां के कुछ ऐसे बन जाते हैं संजय जी कि वहां इफ एंड बट की गुंजाइश बचती नहीं है, तो अलीगढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी की,
अलीगढ़ में ये कहा जा रहा था कि सतीश गौतम के प्रति लोगों की बड़ी अरुचि है, बीएसपी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है, इस कारण उनकी स्थिति खराब हो सकती है।
हाँ लेकिन वोट तो संजय जी मोदी के नाम पे पड़ता है, किसी गौतम के नाम पर या किसी अग्रवाल के नाम पर या किसी अरुण गोविल के नाम पर तो नहीं पड़ता, सब ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है।
जी तो अब हम चलते हैं बिहार की ओर, और बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, 5 सीमांचल की हैं और 5 पर जेडीयू लड़ी है, बीजेपी इन 5 में से एक भी सीट पर नहीं है, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। तो हमारे भाई अभिषेक जी बताएंगे कि क्या आपने देखा, आप तो ग्राउंड पे भी थे आज, शायद
आज भी था, 2 दिन से ट्विटर पे भी वीडियोस डाल रहे हैं आप रिट्वीट भी कर रहे हैं, वो दोनों वीडियोस ट्विटर पे 3 दिन से जो मैं डाल रहा था उसका एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने डाला। आपने ध्यान दिया होगा सर कि जो देशज या यूं कहते हैं जिसको बिहारी या आजकल पसमंदा वाला एक एंगल जो है वो मिजरेबली फेल होता हुआ नजर आया उस वीडियो। मैंने ग्राउंड पर जो दो एक हन्नान थे और एक दो और मुसलमान, उनसे मैंने क्लियरली पूछा था पहले ये कि आपको शौचालय के पैसे मिले, बोला मिला, किसान सम्मान निधि मिलता है, बोला मिलता है, बोला 5 जो अनाज है वो मिलता है, बोला हाँ मिल रहा है। फिर मैंने लास्ट में पूछा कि आवास मिला क्या, बोला हाँ मिला, वोट किसको दोगे, बोला हाँ अच्छा। बहुत वायरल, वो तो आपने रिट्वीट भी किया, वो वायरल चल रहा है। उसके बाद का अगला ये है कि उसने पूछा कि मैंने बोला कि किस नाम पे, तो बोला कि नहीं परिवर्तन के नाम पे देश का राजतंत्र खत्म करना है। तो मैंने उसको डांट के पूछा, वो लिटरली उस मुस्लिम को, कि कमाल करते हो, नेहरू का, नेहरू की बेटी इंदिरा, इंदिरा के दो बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, और तुम मोदी को कह रहे हो राजतंत्र। लास्ट में बोला कुछ भी हो जाए हम हाथ पे वोट दें।
आप भी गजब करते हैं अभिषेक जी, आपको पता होना चाहिए इस्लाम में अकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, गुमानियत है उसकी।
नहीं, बात पता होने की नहीं, लोगों को पता कराने के लिए कि मैं उतना डीप जा करके उनके बीच से बाइट लेकर के आया हूं। तो आप मोदी जी को मैंने टैग किया था, तो 1.5 लाख लोग तो उस वीडियो को देख चुके हैं ट्विटर पे जिसपे टैग किया है। मोदी जी को भी पता चलना चाहिए ना कि सब कुछ दे रहे हैं लेकिन वोट नहीं मिल रहा है, पहली चीज तो ये क्लियर करेंगे। अब आते हैं आपके सबसे पहला।
मोदी जी तो आजकल फॉर्म में आ गए हैं, आजकल तो वो कोई मुस्लिम ही मुस्लिम बोल रहे हैं, तो कोई डिफरेंस कर नहीं रहे,
उनको कोई गलत फहमी नहीं है,
उनको कोई गलत फहमी नहीं है।
2014 का नैरेटिव ले आए हैं वापस।
उनको कोई गलत फहमी नहीं है। एक शॉर्ट्स भी डाला है जिसमें एक लड़का बाहर निकलता है, बोले किसको वोट किए हो, तो बोल रहा है उसको तो वोट नहीं किए जो मेरा 55% जमीन हड़पना चाहता है, गांव का लड़का। वो भी ट्विटर पर वीडियो
वाला, तो मतलब सैम पित्रोदा को धन्यवाद देना पड़ेगा।
नहीं, सिर्फ सैम पित्रोदा के क्यों, शुरू तो मोदी जी ने ही किया, चुनाव में रंग तो वहीं से, वो 55% तो एडेड है। अब आते हैं किशनगंज, बड़ा टफ है सर किशनगंज, एक वाक नहीं रहा कांग्रेस के लिए।
ऐसा क्यों, वोटिंग परसेंटेज तो 10% कम है।
सुनिए कहानी, मुजाहिद आलम, मोहम्मद जावेद, ये दोनों जितना अच्छा चुनाव लड़े उससे कहीं ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ा अख्तरुल इमाम, जो कि ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन से लड़ा। और तीन चीजें उसने साबित करने की कोशिश की है पूरे किशनगंज में। राजद एंटी मुस्लिम है, उसने शहाबुद्दीन की वाइफ को टिकट नहीं दिया, पप्पू यादव को हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी आपके बीच का नेता है उसको हराने का प्रयास किया गया है, और राजद ने ही ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन के 4 विधायकों को मिला। अब बहुत अच्छा कैंपेन करा उसने, 25,000 का मात्र पिछली बार का मार्जिन था। अगर मुजाहिद आलम या अख्तरुल इमाम इस दौरान लूट ले जाए मजा इस लोकसभा चुनाव में, तो कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए इसको मैंने येलो में रखा है। अब आते हैं कटिहार।
नहीं नहीं, तो इसमें जो है जेडीयू का कौन है, वो भी निकल सकता है ना।
हाँ, मुजाहिद आलम हिंदुओं ने तो झार के वोट दिया, हिंदुओं ने तो पक्का वोट किया पूरे इस पूरे चुनाव में, जो सीमांचल
चतुष्कोणीय चुनाव में, तो जो 30-35% ले आएगा वो जीत जाएगा।
कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ। दुलाल चंद गोस्वामी जो कि कटिहार से जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मोदी जी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, पिक करना शुरू हुआ। मैं कटिहार शहर के अंदर घूम रहा था तो किसी ने कहा कि कुत्ता खड़ा हो जाएगा, मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे। मैंने बोला भाई ऐसा क्या है, बोला सब मुसलमान उधर वोट दे रहे हैं, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है। अब ये जो सेंटीमेंट है ना, वो फिर विकास और सारे मुद्दे फिर गौण हो जाते हैं सर। दुलाल चंद गोस्वामी और
तो कटिहार में तो हिंदू अभी भी मेजोरिटी में है।
हाँ, नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जो कह रहे कम वोटिंग, कटिहार की तो ठीक ठाक वोटिंग हुई, 61% तो अभी तक का आंकड़ा आ गया है कटिहार में, तो पिछले साल के हिसाब 2019 के हिसाब से हम देखेंगे ना, बढ़िया वोटिंग हुई
कटिहार है 57.89,
नहीं 61% मेरे पास आंकड़े आ गए हैं, 61% का अभी आया हुआ है तो वोटिंग हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था, 59 के आसपास था, ठीक है,
पिछली बार था 67.64।
एक सेकेंड, पिछली बार का
स्क्रीन पर सारे आंकड़े हैं।
ओके, ठीक है, हाँ 67 था, राइट, तो थोड़ा कम हुआ है, 61% तो अभी आ रहे हैं, नॉट बैड, 4% टोटल बिहार में कम हुआ। और उसको लेकर के मैंने एक शो में बताया था कि जितने लोग होली में इस बार आकर के वापस नौकरी को चले गए, उनका वापस आके वोट देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2014 में मोदी को लाने की जीत थी, 2019 में मोदी को जिताने की जीत थी, 2024 के चुनाव में इनको पता है अब मोदी जी जीत जाएंगे, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए, पहला कारण। दूसरा कारण, यहां से मुसलमान भी ईद के बाद निकल गए, अरे छुट्टी ईदे तक का मिलता है भाई, वो भी डाउन हुआ है। इन दोनों चीजों को लोग
देखा गया है कि मुसलमानों का परसेंटेज डाउन है, उत्तर प्रदेश में तो काफी डाउन है, राजस्थान,
किशनगंज का दीजिए ना सर, देखिए ना किशनगंज का वोटिंग देख लीजिए ना,
हाँ 12% डाउन,
12% किशनगंज में डाउन हो गया है। कैसे डाउन हो गया?
10% डाउन।
किशनगंज जैसा लोकसभा जहां इतना अधिक मुसलमान है वहां इतना कम वोटिंग हो रहा है, तो ये जो आकलन हो रहा है कि हिंदू कम वोटर दे वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो रामपुर में क्यों कम हुआ?
उधर तो, धन की कमी है, धन की कमी है, पहुंच नहीं पा रहा वहां।
हर सर धन की कमी यहां भी है सर।
नहीं नहीं, तेजस्वी के पास का है कि धन की कमी,
क्या बात कर रहे हैं सर, धन की कमी दिखाएंगे कैसे, नजर में तो है ना ईडी सीबीआई, फंसे हुए ना सर, अभी रिस्क नहीं ले सकते ना 2025 के पहले जाने का, कोई बात नहीं। कितनी रैलियां की, पूरा पूर्णिया में उतार दिया तेजस्वी यादव ने कुनबा की, पप्पू यादव को हराना है, 42 विधायक उनके घूम रहे हैं, बीमा भारती के पति स्वयं बाहुबली माने जाते हैं बड़े, और पप्पू यादव स्वयं कैमरे पर कोई बात करने को तैयार नहीं कि किसको वोट कर रहे हैं, कैमरा बंद करो, ऑफ कैमरा पूछो तो 10 में से 6 लोग जो साइलेंट वोटर है वो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट नहीं करेंगे। कहानी में ट्विस्ट ये है, तो कैमरा पर जो नजर आ रहा है वो ऑफ कैमरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपराध का लंबा,
पप्पू यादव को भी हरा रहे हैं, मतलब
1.5 लाख वोट से कम जीतेंगे संतोष कुशवाहा, कम से कम 1.5 लाख वोट, और बिहार में ठीक ठाक मार्जिन माना जाता है।
अरे राम राम, आप तो हमारे दिल को बिल्कुल दहला दे रहे हैं।
अभी तो कुछ नहीं दहलाया,
लोकसभा में पत्रकारों का मन कैसे लगेगा पप्पू यादव अगर आप नहीं भेजेंगे।
सर देखिए, अब आपका मन तो लगा रहे हैं सत्य हिंदी वाले, वहां तो बीजेपी शायद 25-26 सीट ही अब पूरे 2 चरणों में जीत रही है, तो वहां तो मन
योगेंद्र यादव का नहीं देखे हैं क्या?
नहीं,
क्या बोले योगेंद्र यादव? योगेंद्र यादव तो 10 सीट जिता रहे हैं राजस्थान में, और बीजेपी की 20 सीट कम कर रहे हैं आपके
उत्तर प्रदेश में,
बिहार में भी 10 सीट कम कर रहे हैं, और बाकी कम करते करते तो 200 पे ले आए हैं वो भाई।
हाँ तो वो तो पहले उनका भी पहले से भी यही एजेंडा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और आदरणीय गुरु जी भाऊ तोरसेकर सर भी कहते हैं, 3 जून तक तो बीजेपी रोज चुनाव हारेगी, लेकिन 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा उसी दिन चुनाव जीत जाएगी। अब दिक्कत क्या है सर, मैं ये तो ग्राउंड स्वयं कवर किया हूं, और ये तो दर्शक भी देख रहे हैं कि अभिषेक धूप में भी ग्राउंड पर है, तो मैं तो ग्राउंड कवर किया हूं, और जो पोलराइजेशन है, जो इंपैक्ट है, और नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पे सेकेंड फेज का इलेक्शन बदल दिया, वो भी जदयू के लिए। सर बड़ी बात तो ये है, सभी सीटों पर जदयू लड़ रही है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने पिक किया ना कि आपका मंगल सूत्र तक छीन लेंगे, वो गांव गांव तक पहुंचा, एकदम पोलराइज हुआ। ये बात तो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले फेज में भी थी, वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे बोलेंगे। आप में से कई दर्शक हो सकता है पूछ रहे होंगे यूपी को लेकर के भी, मैं आऊंगा वहां पर, लेकिन भागलपुर को लेकर के बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे होंगे, भाई वोटिंग कम हुई है, अजय मंडल अजीत शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है, अजय मंडल जदयू से, अजीत शर्मा नेहा शर्मा जैसी हीरोइन के पिताजी हैं और विधायक भी रहे हैं कांग्रेस से, बड़े नेता हैं, लेकिन सर 2.5 लाख का मार्जिन था पिछली बार बिहार के भागलपुर में, 2.5 लाख का मार्जिन, दलित पिछड़ा वनवासी लोग और थोड़ा बॉर्डर एरिया का संथाल, सब तीरछाप ब्लाइंड वोटर है उसको।
उसके बाद मोदी का वोटर भी तो है आपके इसमें,
नहीं वो तो है, मैं एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, दर्शक शायद जो बिहार के भागलपुर के समझ जाएंगे, उनसे आप 100 बात कहिए कि अरे मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, वो अगर अगेंस्ट भी रहते तो वो सब बात कहेंगे, हाँ नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, सब बात ठीक है, लेकिन वोट नीतीश को दे। इस बात का कोई उत्तर नहीं है सर, वहां लॉजिक काम नहीं करता। वो इसलिए करता है कि हर गांव में आपको जीविका दीदी मिल जाएगी। ये लोग नहीं समझते नीतीश ने क्या बदल दिया है। नीतीश कुमार के एक मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं सर, जिस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस स्टेट में महिला पुलिस विभाग में शामिल होकर के अब सुरक्षा दे रही है स्टेट को, ये कम बड़ा महिला सशक्तिकरण है क्या? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में लोगों को देना है। जिस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद निकलती नहीं थी और मास लेवल पे भर्तियां हुई हैं सर, लोगों को ये नजर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका रिजल्ट का इंपैक्ट आपको भागलपुर और बांका में गिरधारी यादव जेडीयू से लड़े जयप्रकाश यादव के अगेंस्ट में, 2 बार पहले भी जयप्रकाश यादव चुनाव हार चुके हैं और क्या बोलते हैं वो लोग उनकी भाषा में, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हारेंगे। ये सही मैंने प्रोनाउंस किया था, गलत किया था?
अल्हम्दुलिल्लाह,
ठीक है, इस बार भी हारेंगे। तो ये कहानी है बिहार की, लेकिन 1 मिनट में यूपी पे लूंगा सर। अमरोहा सीट पर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, ना बीएसपी है ना आरएलडी है, दानिश अली के समर्थन में ना बड़ी रैलियां हुई, ऐसा क्या तोप मार दिया?
क्या अमरोहा कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैली हुई जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने अपना हाथ मिला के उठाया है?
लोग कहां थे सर, रैली तो गजब हाल है सर। महाराष्ट्र में पोलिंग देखिए कितना ड्रॉप हो गया, क्यों ड्रॉप हुआ? अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क होंगे, कुतर्क हो सकते हैं, सत्य तो ये कि कैडर विहीन पार्टियां लड़ रही हैं वहां पर, ना एनसीपी के पास अपना कैडर है, पोलिंग बूथ नहीं पे एजेंट नहीं मिल रहा है सर एनसीपी के लिए, कांग्रेस के लिए वही हाल है महाराष्ट्र में।
आपने ये बात कही तो मैं आपको, आज मैं देख रहा था TV9 पे अमिताभ अग्निहोत्री का शो आता है, तो डॉली शर्मा वहां से लड़ रही है नोएडा से। कह रहा था कि मैं गया था वहां पे बूथ पे, 45 मिनट रहा, वहां कोई है ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से बेचारी का पैसा खर्च करवा दिया।
हाँ है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ,
यही हालत हमारे वाले उस पर थी बूथ पर। मैं गया था करीब 12:30-1 बजे के आसपास गया था, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो बस्ते लेकर के बैठे थे, पर्चियां बना रहे थे, वहां तो ठीक ठाक भीड़ थी। कांग्रेस वाले पे 3 या 4 ही लोग खड़े हुए थे और बाकी सारी कुर्सियां खाली भी पड़ी थी, बस 1-2 लोग बैठे हुए थे।
तो ये तो हाल तो बाकी बेहाल है।
नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, चुनाव जीतने के लिए कैडर तो होना चाहिए सर।
बात तो आपकी सही है। तो आप चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र में, वरुण जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, उनसे पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में 58.85% क्या हुआ
महाराष्ट्र में सर? एक तो इस बार जो 8 सीट थी उसमें से दर्शकों को बता दूं कि 3 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, 4 शिवसेना के पास थी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थी नवनीत राणा अमरावती से, वो अभी बीजेपी से लड़ रही है। तो वैसे 8 के 8 सीट अभी एनडीएफ एक्शन के पास थी, पर इसमें से पिछली बार 3 सीट पे क्लोज कॉन्टेस्ट था। एक तो अमरावती का था जहाँ पे नवनीत राणा बस कुछ 35-36 हजार वोटों से जीती थी, एक अपना परभनी का था वहां पे भी ऐसा ही कुछ 40 हजार वोटों का मार्जिन था, और एक नांदेड़ का था वहां पे 40-42 हजार वोटों का मार्जिन था।
परभनी तो शिवसेना थी शायद?
हाँ शिवसेना थी वहां पे,
और
शिवसेना के पास नांदेड़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था और बीजेपी 40 हजार वोटों से वो सीट जीती थी। पर अभी नांदेड़ में अभी जो पिछले कुछ महीनों में हुआ, अशोक चव्हाण अभी बीजेपी में आ गए, तो इस बार तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है नांदेड़ का, क्योंकि एक तो अशोक चव्हाण का होम कैडर भी है और दूसरी बात कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने वहां पे रैली की है। ये काफी रेयर देखा जाता है कि दोनों एक साथ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रैली करें, तो इस बार वो सीट तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वोटों से जीत जाएंगे वो। अमरावती अभी भी क्लोज कॉन्टेस्ट ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार नवनीत राणा इंडिपेंडेंट लड़ी थी तो काफी मुस्लिम वोटर्स का उनको समर्थन मिला था, और INC हो या शरद पवार हो, उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट उनको डिक्लेयर किया था, तो 15% मुस्लिम वोट और कुछ 20-22% दलित वोट है वहां पे, तो उनका काफी समर्थन उनको वहां मिला था। पर इस बार क्योंकि वो बीजेपी से लड़ रही है तो वो परसेंटेज शायद ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात,
तो VBA कितनी सीटों पे लड़ रही है?
VBA तो ऑलमोस्ट हर सीट पे लड़ रही है। यहाँ पे भी एक मिनट, अमरावती में VBA का ये कैंडिडेट है इस बार, अमरावती में आनंद अंबेडकर है, VBA डायरेक्टली नहीं लड़ ली, पर प्रकाश अंबेडकर का जो भाई है आनंद राज अंबेडकर और अंबेडकर का ग्रैंडसन, वो वहां से लड़ रहे हैं, और VBA और MIM दोनों ने उनको एक्सटर्नली सपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो अगर ये अच्छा खासा वोट ले जाते हैं वहां पे, अगर मुस्लिम और दलित वोट, तो वहां पे शायद छूट सकती है बीजेपी के लिए सीट, पर वो क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये 40% का जो सेक्टर है मुस्लिम दलित वोट का, वो अगर BSP का भी वहां पे कैंडिडेट है, तो अगर VBA और ये BSP,
तो आनंद अंबेडकर किसकी तरफ से लड़ रहा है?
वो रिपब्लिक पार्टी है अलग से, उसको एक्सटर्नली VBA और MIM ने सपोर्ट किया है।
तो वो तो मतलब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया ना वहाँ पे?
हाँ, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वहाँ पे। और पिछली बार VBA को 65,000 वोट मिले थे और इनका जीतने का मार्जिन 36,000 था, तो इस बार MIM भी सपोर्ट कर रही है, तो वो अगर 1.25 लाख वोट तक चला जाए अगर आनंद अंबेडकर का, तो फिर नवनीत राणा आराम से जीत सकती है सीट 50-60,000 वोटों से।
ओके,
बाकी यहाँ पे थर्ड सीट अपनी परभनी में कॉन्टेस्ट था, वहां पे शिवसेना के पास ही है वो सीट 99 से, और 2014 और 2019 दोनों में संजय यादव वहां पे जीते थे, पर इस बार वहां पे संजय यादव और महादेव जानकर, जो एक अलाय पार्टी है महायुति में, तो महादेव जानकर वहां से लड़ रहे हैं। वहां पे मेन एक जो फैक्टर था उनको टिकट देने का, वो कास्ट इक्वेशन था, तो वहां पे कुछ 9 लाख OBC वोटर्स है, जिसमें से 3 लाख जो है वो महादेव जानकर के कास्ट के, धनगर कास्ट के, तो अगर वो वोट उनको एनमार्स चले जाते हैं और OBC वोट अगर BJP की तरफ आता है, तो शायद इनका विनिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है। और मराठा वोटर्स वहां पे स्प्लिट हो रहे हैं, एक तो एक शायद तुपकर है जो एंटी गवर्नमेंट फार्मर लीडर है, तो अगर वो 50,000 1 लाख वोट ले जाते हैं, तो फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का गट और ये महादेव जानकर, इसमें फिर वो कॉन्टेस्ट रह जाएगी, और उद्धव ठाकरे के वोट में से जो तुपकर है उनको 1 लाख मिल जाए, तो महादेव जानकर की सीट आराम से छूट सकती है।
अच्छा, इसमें जो है ये बताएं कि पिछली बार मराठा वोट किस तरफ पोलराइज थे?
पिछली बार तो अच्छा खासा BJP को वोट हुआ था मराठाओं का, पर इस बार आई थिंक BJP इज बैंकिंग मोर ऑन OBC वोट, क्योंकि एक थोड़ी सी एक नरेटिव बनाया गया था शरद पवार की पार्टी ने कि BJP इज प्रो ब्राह्मण प्रो OBC पार्टी, और मराठाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो थोड़ा सा एक मराठा वोट स्प्लिट हो सकता है शरद पवार और BJP में।
ओके, तो आप ये 8 सीट जो गई है इनका क्या हिसाब किताब बताते हैं?
BJP के जो 3 सीट थे वो तो BJP आराम से रिटेन कर रही है। अमरावती में डिपेंड करता है कि वंचित बहुजन अगाड़ी मतलब आनंद अंबेडकर को कितने वोट मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि BJP जीतेगी या नहीं। शिवसेना के पास जो 4 सीट थी उसमें से 2 तो वो जीत रही है। हिंगोली की एक ऐसी सीट है जो अब तक कभी भी जो इनकम्बेंट MP है वो जीता नहीं है, तो BJP तो आज तक एक भी बार नहीं जीती और इनकम्बेंट MP वहां पे कभी भी जीता नहीं है, तो हिंगोली की सीट शायद वंचित बहुजन को जा सकती है, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि जो महायुति का भी कैंडिडेट है और जो महाअघाड़ी का भी कैंडिडेट है, दोनों का उतना ग्राउंड पे ये पकड़ नहीं है, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट है वहां पे हिंगोली में वो तीनों फर्स्ट टाइमर्स है, और वहां पे VBA को थोड़ा सा ये लोगों का सपोर्ट ज्यादा है, तो एक वो सीट हिंगोली की सीट VBA को जा सकती है, और एक और सीट है जहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है अपना, यवतमाल माशी। तो वाशिम सीट जो है वहाँ पे पिछले 3 बार से जो है वो ये गवड़ी जीत रही थी, एक मिनट, भावना गवड़ी, वो 2009 से वहां जीत रही थी। और पहले यवतमाल वाशिम भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, तो वाशिम भी उन्होंने पहले लड़ा है और जीता है। पर इस बार वो कुछ उनपे करप्शन चार्जेस थे, तो वहां पे एक कैंडिडेट चेंज कर दिया है। तो हिंगोली का जो शिवसेना का कैंडिडेट था, उनको वहां से टिकट काट के उनको पत्नी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया गया है। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गट है, उनके और एकनाथ शिंदे में ये कॉन्टेस्ट है। तो वो थोड़ा सा इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट वहां पे चल रही है कि ये बाहर से लाके यहाँ पे कैंडिडेट दिया है। पर एकनाथ शिंदे ने वहां पे काफी काम किया है, 4 बार वो वहां जाके आए, और शिवसेना के भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो वहां पे काफी ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है। तो जीत तो सकती है शिवसेना, पर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा वहां पे भी। सो आई थिंक 3 BJP, 3 शिवसेना, 1 क्लोज कॉन्टेस्ट एंड 1 for VBA।
ओके, तो ये हो गया। ये बताइए कि 3 सीटें अभी भी बाकी हैं, ठाणे और मुंबई की 2 सीटें जिन पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है किसको जा रही हैं, अभी क्या है सिचुएशन है?
ये तो अभी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, एकनाथ शिंदे भी नहीं कर रहे, और बीजेपी भी थोड़ी सी बच रही है अभी, क्योंकि इंटरनली काफी मुंबई नॉर्थ और मुंबई सॉरी मुंबई साउथ के लिए भी बीजेपी भी दावा कर रही है और शिवसेना भी दावा कर रही है। वैसे ही नासिक के लिए भी एक कंटेस्ट चल रहा है, शिवसेना को उनका चाहिए। एनसीपी में भी छगन भुजबल ने पहले क्लेम की थी, पर वो मराठा वोटर्स का रिसेंटमेंट था उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मराठा रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ओबीसी का रिजर्वेशन चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा अपोज कर रहे थे मराठा रिजर्वेशन को, तो वो थोड़ा सा उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। पर एनसीपी अभी भी थोड़ा क्लेम कर रही है उस सीट को। परसों गोपीनाथ मुंडे की जो लड़की थी, पंकजा मुंडे, उनको अभी वहां बीड की सीट मिली है। तो उनकी जो बहन है प्रीतम मुंडे, जिन्होंने पिछली बार लड़ा था वहां से, तो वो कह रही है कि प्रीतम मुंडे को भी हम नासिक से लड़वाएंगे। तो एक नासिक के लिए भी तीनों पार्टियों में चल रहा है, मुंबई साउथ के लिए बीजेपी शिवसेना में चल रहा है, पर अभी कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे कोई, वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेते हैं।
ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कर्नाटका और केरला की। कर्नाटका में 14 सीटें थी और केरला में 20 सीटें। तो केरला में तो जो समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब की बीजेपी के लिए कोई भी सीट जीतना मुश्किल है। और आप बताएं, आपके अगर कुछ, अभिषेक जी।
नहीं, मुझे लगता है कि त्रिशूर और ये दोनों सीटों पे बहुत अच्छा फाइट हुआ है। ये कहना मुश्किल होगा कि बीजेपी दोनों सीटें हार रही है। मेरे हिसाब से बीजेपी दोनों सीट पे बहुत अच्छा फाइट कर रही है, तो अब देखना होगा कि जीत भी सकती है। और दूसरी बात इसको लेकर के जो बात हो रही है, आशिकों के सुरूर शशि थरूर, तो वो तो खुद फंसे फंसे से हैं।
आशिकों के
वो तो
ये
फंसे
ठीक
फंसे
है।
हैं, ऐसा तो नहीं है। अब कर्नाटक पे आते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक में
एक्चुअल में अभिषेक जैसों ने शशि थरूर को बड़ा बदनाम किया हुआ है। अभी एक
हाँ, काम तो
जगह,
ये सब करते हैं, उल्टे हो बदनाम शशि थरूर को
हाँ,
करते हैं।
वो बेचारा जो है वो अभी एक और कोई पता नहीं बुलडोजर का वो क्या था, उसमें कोई लेडी थी, वो उसके कान में कुछ कह रही थी, उस पर पता नहीं क्या क्या लिख रखा है लोगों ने। तो ऐसा कैसे,
अरे मैंने
मतलब
कहा कुछ रखा है, लोग तो मोए मोए
उसको
कर रहे हैं। पता नहीं
लगता
महुआ
है।
मोइत्रा के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे थे, पता नहीं। मेरे भी कान में आवाज आती है तो मैं सुन लेता हूँ, ग्राउंड पे हूं तो आती है सर आवाजें, तो बोलता हूँ। इसमें क्या है,
इतना
लोगों
डिफेंसिव
को भी
क्यों
पता
हो
होना चाहिए।
रहा
मैं कर्नाटक की कुछ सेफ सीटों पे बात करूंगा, जहां पे कुछ चीजें फंसी हुई है उसके ऊपर बात करूंगा।
है? एक बात मैं पहले आपको बता दूं, एक चीज, कि
जी
कर्नाटक का, आप थोड़ा सा कर्नाटक, एक मिनट देखते हैं, सामने लाते हैं। कर्नाटक का एक थोड़ा सा ये हुआ कि आप ये देखें कि शुरू में कर्नाटक में पोलिंग बहुत स्लो थी, बहुत ही स्लो थी। और जब पहला जब रुझान आया था तो कर्नाटक में 10% से कम वोट पड़े थे। और बाकी सभी जगह अच्छे वोट पड़े थे। और जब ये लास्ट में आया, आप देखें कि बेंगलोर जैसी जगह पे भी और बेंगलोर साउथ जैसी सीट भी इस बार 52% क्रॉस कर ली।
हाँ,
यानी पिछली बार की थी कि नहीं की थी, हाँ,
53.7%
थी और अभी भी वहाँ पे 53% वोट पड़ गए। और बेंगलोर रूरल में आपके पिछली बार से ज़्यादा वोट पड़े। तो ये ओवरऑल जो है टर्नआउट 68.38% जो गया है वो पिछली बार से ज़्यादा है।
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जहां पर कैडर है, जहां पर फाइट होना है, वहां पर फाइट हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं। अब दो चीजें हैं कर्नाटक के बारे में विश्लेषण करूं, उससे पहले नेहा को श्रद्धांजलि भी दे दें और नेहा का इंपैक्ट भी है। ये दोनों चीजें हैं। जो कुछ भी हुआ वो तो दुखद था ही, लेकिन जो एक एंगर है वो दिखता है। उडुपी, चिकमंगलूर, कोटा श्रीनिवास पुजारी लड़ रहे हैं और जयप्रकाश हेगड़े के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कांग्रेस से। ये सीट 70-30 है, 70 बीजेपी की तरफ, 30% समवेयर कांग्रेस। हासन सीट क्लोज है, दक्षिण का हासन सीट में प्रज्वल रेमन लड़ रहे हैं जेडीएस से ही, वो जेडीएस के खाते में सीट दे दी गई थी, वो क्लोज है। दक्षिण कर्णा में कैप्टन ब्रजेश चौटा मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल और ठीक ठाक मार्जिन से आगे दिख रहा है। चित्रदुर्गा सॉलिड सीट रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए और है भी। तुमकुरु में वी सोमनाथ फंसे फंसे से हैं, ये सीट फंस रही है ये सोच करके मैं परेशान हो गया। ये क्या हुआ, जेडीएस और बीजेपी के अलायंस का नुकसान है। सर आपने कुछ 8 महीने पहले एक पोल किया था, आपने नहीं एक्चुअली जो चिंतामणि सर हैं उन्होंने एक पोल किया था, तो आया था रिजल्ट में कि बीजेपी जेडीएस के साथ लड़ेगी तो 21-22 आएगी, लेकिन अकेले अगर लड़ती है तो 24 से अधिक जा सकती है। जयपुर डायलॉग्स में ही हम लोग वो शो 8-9 महीने पहले
काफी पहले किया था।
जी, वो इम्पैक्ट है वहां पे तुमकुरु में, और अदरवाइज तुमकुरु सीट फंसनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अब सुमन्ना साहब का क्या है, मैसूरू ये भी बहुत क्लोज है, एम लक्ष्मण के अगेंस्ट में कृष्णदत्त खड़े हुए हैं।
तुमकुरु में 77.58% हो चुका है, अभी और बढ़ेगा। तो वहां पिछली बार से ज्यादा वोट पड़े।
अब वही देखना है कि वो लास्ट का वोटिंग, वो 2-3 दिन तो लगेगा ना सर अपडेट आने में भी, तो हम फिर प्रॉपर
एक ओवरऑल मेरा अनुमान ये है कि पिछली बार से अच्छा वोट पड़ा कर्नाटक में, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए। वैसे तो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए इसके ऊपर,
नहीं देखिए बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बोला ना कि वो नेहा वाला फैक्टर
ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, वो आप बता सकते।
नहीं, कभी कभी तात्कालिक कारण बहुत इंपैक्ट कर देता है सर। वैसे तो अब 1857 की क्रांति के कई कारण थे, लेकिन अब सुअर और गाय की चमड़ी वाला जो हम पढ़ते आए हैं वही तात्कालिक कारण मान के चलते, और वही विस्फोट का कारण था, सिपाही विद्रोह का कारण था। उसी प्रकार से हिंदुओं के विद्रोह का कारण जो रेडिक, आप देखिए मोदी जी की प्रचार में वो लगातार वो पिच किया गया है। अगर पिच नहीं किया गया होता तो और बात थी, लेकिन वो लगातार पिच किया गया कि वो हनुमान चालीसा बेचारा पड़ रहा था उसको जेल में डाल दिया गया, वो तो कांग्रेस के लीडर को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, वो इसका एक लार्ज इंपैक्ट हुआ है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बेंगलोर शहर में भी बहुत ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। बेंगलोर रूरल में तो ऑब्वियस सी बात है, चलो ठीक है, लेकिन तेजस्वी सूर्या वाले कंस्टिट्यूएंसी पे भी अगर इतनी अच्छी वोटिंग हो रही है तो वो इंपैक्ट है। वो तेजस्वी सूर्या के अगेंस्ट भी इन लोगों ने फालतू में बनाने का कोशिश किया। तो कांग्रेस बचाने के चक्कर में सब कुछ बहुत तेजी से कर्नाटका में ग्राउंड लूज कर रही है। एक और मुद्दा है जिसपे किसी भी विश्लेषक का ध्यान नहीं गया है। अभी चुनाव के समय तो पानी मिल रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ कनाडिगा हमारे मित्र और भाई बंधु के फोन आए थे इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, जो वहां पे वाटर टैंकर घूमते हैं कर्नाटका में, वाटर क्राइसिस हुआ था अभी वहां पे, और वाटर टैंकर 6-7 इनफैक्ट कहीं कहीं 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस में घूम रहे थे, और टैंकर माफिया का कांग्रेस सरकार के साथ साठगांठ होने का जबरदस्त प्रभाव है, इसको लेकर के भी वोटिंग हुई है। जी
एक बात आप बताएं, मेरे पास जो मैसेज आया है हमारी टीम से, कहता है कि भाजपा 14 की 14 सीटें जीत सकती है इंक्लूडिंग बेंगलोर रूरल।
जीत सकती है सर, जीत सकती है।
तो ये सिचुएशन बन रही है। अब ओंकार जी, पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? वहां तो स्थितियां और भी गंभीर होती जा रही हैं।
मैं दिन में अविश
एनएसजी भी पहुंच गई वहां पे।
जी जी, वहां तो कुछ बरामदगियां हुई हैं और विस्फोटक वगैरह मिल रहे हैं संदेश खाली इलाके में। और ये निश्चित रूप से जिस तरीके से ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं उनको रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, अब देखिए वहां से जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ममता बनर्जी की इस हड़बड़ाहट और घबराहट को एक तरीके से रेखांकित करने वाली हैं। और जिस तरह की सूचनाएं पिछले दिनों आई हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं संजय जी के, भारतीय जनता पार्टी जो हम सोच रहे थे कि उलट हो जाएगा, यानी 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी और 17-18 जो है वो टीएमसी लटक करके रह जाएगी, अब तो वहां से सूचनाएं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 25-32 सीटें तक जीत सकती है और टीएमसी जो है वो 10-15 सीटों के बीच में कहीं लटक सकती है। ममता बनर्जी के जो तमाम तरह के ये रिएक्शंस आ रहे हैं, जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये भी बताती है, और मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी, पहली बार अमित शाह, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक हैं और एजेंसियां इतने अलर्ट पर हैं कि अगर कहीं से कोई सूचना आ रही है तो भले ही एनआईए के ऊपर अटैक हो चुका, भले ही ईडी के अधिकारियों को पीटा जा चुका, पर उनका मनोबल 7वें आसमान पर है। जहां से जो सूचना मिल रही है जाकर के वो दबोच रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में बहुत दिलचस्प सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है होता हुआ, और मुझे लगता है कि इन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव में उल्टी गिनती के प्रमाण होंगे, बल्कि शुरुआत हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल से तो सूचनाएं कम से कम जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है उसके लिए शुभ आ रही हैं।
जी आपके पास क्या सूचना है? तीनों सीटें जीती जा रही हैं अभिषेक जी?
सब बहुत है, तीनों सीटें जीती जा रही है। बालूरघाट में भी सुकांत मजुमदार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी दो सीट पे तो कोई दिक्कत था भी नहीं। तीन दिन पहले एक बयान आया था सर शुभेंदु अधिकारी का, ये कॉन्फिडेंस के लिए था कि लोकसभा चुनाव के 3 महीने के भीतर टीएमसी की सरकार गिर जाएगी। अब ये बयान क्यों दिया गया था? जो कैडर है उसके मन में ये था कि इस बार कहीं दे देंगे फिर 2021 ना हो जाए। और शुभेंदु अधिकारी किस कॉन्फिडेंस पे दे रहे हैं? तो उसका उत्तर आज मिला है, जैसे कि आज फिर एनएसए पहुंच गई है बॉम्ब स्क्वाड संदेश खाली में, उससे पहले सारी चीजें हो रही है। ये सब लेयर बनाए जा रहे हैं कि एक बार जब लगा देंगे ना राष्ट्रपति शासन तो सुप्रीम कोर्ट भी उठा के ये ना कर पाए कि नहीं नहीं वो साबित करेंगे वहां पर कि ये हो गया है, यहाँ पर अब बर्दाश्त के बाहर है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के संदर्भ में पहले से ही बोल के सुप्रीम कोर्ट भी फंसा हुआ है, बाकी आज ईवीएम पर तो खेल हो ही गया है। तो मुझे को तो कोई नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कुछ।
आपने अच्छा याद दिलाया साहब, वो ईवीएम वाला तो बहुत ही मजा आ गया। अब तो ना उगलते बनेगी ना निकलते बनेगी, अब किस पे रोएंगे?
गंगाजल फिल्म का एक संवाद था, ये तो सलाह होना ही था। तो जहां कोई डाउट था नहीं वहां पे, हाँ प्रशांत भूषण डाल के आए हैं वोट, अब वोट डाल के आए हैं तो पता नहीं वीवीपैट में दिखा है उनको या कुछ नहीं दिखा है, वो तो वही जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा सुना तथ्य सुने उसके बाद उनको लिटरली डांट के भगा ही दिया। तो
अब नहीं, नहीं, वो पता चला है कि प्रशांत भूषण, राहुल गांधी और योगेंद्र यादव वगैरह ये सब मांग कर रहे हैं कि साहब ईवीएम के बजाय एक मतपेटी रखी जाए, हमारे लिए एक मतपत्र छापा जाए, हम तो उसी में डालेंगे, हम ईवीएम में वोट डालेंगे ही नहीं।
हाँ तो मत डालिए,
लेकिन डाला है वो तो आज प्रशांत भूषण। बड़ी समस्या है। और एक बस मेन बचती है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो कुछ थोड़ी सी अजीब सी दिखी, क्योंकि वहां पर काफी कम गया है मध्य प्रदेश में वोट।
काफी कम गया है क्योंकि टीकमगढ़ में आप देखिए 58% है और पिछली बार 66% से ऊपर था। दमोह में 55% के आसपास है, पिछली बार 66% था। खजुराहो में तो, खजुराहो में तो बहुत बुरा हाल है,
खजुराहो में तो कांटेस्ट ही नहीं है ना, इसलिए बुरा हाल है।
53% पड़ा है जबकि पिछली बार 68% था।
देखिए खजुराहो में क्या हुआ था, खजुराहो की सीट जो थी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी वाले ने अपना पर्चा करवा लिया रिजेक्ट, और वहां पे अब बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं, तो फिर वो कैसे अब वोट पड़े।
हर जगह वही हाल है, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग कम परसेंटेज पे बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा चुनाव जिसमें पता होता है कि प्रो इनकम्बेंसी पे जा रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी विशेष नहीं है, उसमें ऐसा होता नहीं है कि परिवर्तन के लिए वोट बढ़ चढ़ के होगा, कहां से होगा सर। 2019 का एक ऐसा चुनाव था जहां पर कम से कम यूपी में बीजेपी के अगेंस्ट जो अलायंस था वो दावा कर रहा था कि हम भी 50 सीट जीतेंगे। यहाँ क्या दावा करेंगे, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यहाँ तो रैलियां नहीं हो रही है, और ज्वाइंट एक आध रैली हुई तो वहां पर लोग नहीं, उससे ज्यादा तो पत्रकार घूम रहे थे जितने लोग थे। ये तो स्थिति है सर।
इस बार ऐसा लग रहा है कि सबने वॉकओवर दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि यार हम क्या खर्च करें।
राजस्थान में तो लड़ाई अच्छी की है इन्होंने,
राजस्थान में
अच्छी लड़ाई की है। राजस्थान का भी आपको बता दूं कि ये जो 13 इसमें हुआ है तो वैसे अगर कंपेयर करेंगे हम इसको 2019 से तब तो कम है, लेकिन पहले चरण के मुकाबले करीब आप समझिए कि लगभग पहला चरण जो था वो 58% था और दूसरे चरण में अभी तक 64% हो चुका है। ओवरऑल जब आएगा तो आप देखेंगे कि 2019 के बराबर आ जाएगा ये लगभग, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो बांसवाड़ा में 72%, बाड़मेर में 73%, ये पिछली बार से बराबर या अधिक हैं। भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र में भी 60%, यानी 60% से कम तो कहीं है ही नहीं। कोटा जैसे शहर में जहाँ शहरी क्षेत्र अधिक है वहाँ भी 71% हो गया। तो
मैं वही कह रहा हूँ,
राजसमंद और टोंक सवाई माधोपुर ऐसे हैं जहाँ 60% से कम है, और इसमें जो है ये यदि बाड़मेर को छोड़ दें तो बाकी सारी सीट्स जो है वो पोटेंशियल दिख रही हैं बीजेपी के लिए। फिर से
जहां जहां फाइट है वहां वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन जहां फाइट नहीं हो रहा है वहां पर बहुत ड्रॉप है। आप महाराष्ट्र में, मैं वही कह रहा था कि महाराष्ट्र को हम देखने का प्रयास करते हैं, कैडर विहीन है, बूथ पर लोग नहीं है, अपने लोग
नहीं मिल रहे थे,
कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जिसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उसको अपना अलग अलग बूथ पे प्रतिनिधि कहां से मिलेगा। स्थिति ऐसी है कि ऑब्वियस रीजन है, ड्रॉप होगा ही वोट।
आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के प्रश्न हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं,